नमस्कार, आज हमारे सामने है अखंड ज्योति पत्रिका का जुलाई 1984 का अंक और इसमें पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत ही कह सकते हैं दूरदर्शी अध्याय है। इस नक्शे में आमूलचूल परिवर्तन होगा
जी। 1984 का समय मतलब शीत युद्ध का दौर।
हाँ बिल्कुल, दुनिया जैसे दो खेमों में बटी हुई थी और उस माहौल में पूज्य गुरुदेव भविष्य की एक बिल्कुल ही अलग एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे थे।
उनका जो मूल तर्क था वो बहुत सीधा लेकिन गहरा है।
हाँ, कि दुनिया का जो ये मौजूदा बंटवारा है जहाँ मतलब ताकतवर देश या गुट वो कमजोरों का शोषण करते हैं
जी,
वही सारे फसाद की सारे संघर्षों की जड़ है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा कि ये जो देशों की सीमाएं आज दिखती हैं ये कोई न्याय या भूगोल के हिसाब से नहीं बनी।
नहीं, ये तो सीधी सीधी ताकत के दम पर खींची गई हैं।
हाँ मतलब जिसकी लाठी है उसकी भैंस।
हाँ बिल्कुल वही, उन्होंने इसे वर्गों का शासन कहा, एक तरह की एक विष बेल सही कहा, जो लगातार झगड़ों को ही मतलब पानी देती रहती है।
और ये समझना भी जरूरी है जैसा आपने शुरू में कहा कि ये सिर्फ फौजी लड़ाइयों तक की बात नहीं है।
नहीं,
पूज्य गुरुदेव का नजरिया बहुत व्यापक था। वो इशारा कर रहे थे संसाधनों के भयानक अन्यायपूर्ण बंटवारे की तरफ। सोचिए, कहीं तो तेल के इतने भंडार हैं, कहीं विशाल जमीनें खाली पड़ी हैं।
हाँ।
और दूसरी तरफ करोड़ों लोग, घनी आबादी, साधनों की कमी।
हाँ, और ये जो विभाजन है कि एक इलाके के लोग उस पर कब्जा जमा लें और उसका फायदा बस खुद उठाएं।
जी,
ये व्यवस्था ही लगातार तनाव पैदा करती है या संतुलन ये टिक नहीं सकता।
और यहाँ बात और भी मतलब चौंकाने वाली हो जाती है। उस समय में जब सब अणु युद्ध के डर में जी रहे थे।
हाँ, वो तो चरम पे था डर।
पूज्य गुरुदेव भविष्यवाणी करते हैं कि न केवल वो विनाशकारी युद्ध टलेगा बल्कि ये जो देशों को बांटने वाली लकीरें हैं,
सीमाएं, हाँ ये सीमाएं ही मिट जाएंगी। उनका कहना था कि ये जो दुनिया का नक्शा आज हम देखते हैं इतने सारे देशों वाला, ये पूरी तरह बदल जाएगा, ये देश रहेंगे ही नहीं।
ये कल्पना करना भी उस वक्त इतना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। और पूज्य गुरुदेव के हिसाब से ये बदलाव शायद बड़े देशों की मर्जी से नहीं आएगा।
नहीं,
वो इसे दैवी शक्तियों का हस्तक्षेप मानते थे। शायद उनका मतलब था कि कुछ बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं होंगी या विश्व चेतना में ही कोई ऐसा बदलाव आए
जो इंसानी कंट्रोल से बाहर हो।
हाँ बिल्कुल, जैसे कोई प्राकृतिक शक्ति काम करती है जो पूरी व्यवस्था को हिला दे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ नक्शा बदलना नहीं है,
ये तो फिर एक आध्यात्मिक और नैतिक बदलाव भी हुआ मानवता के लिए।
बिल्कुल, एक नैतिक उत्थान। उनका मानना था कि युद्धों का समाधान इस बार मतलब आखिरी बार होगा।
तो अगर ये मौजूदा नक्शा बदलेगा, ये सीमाएं मिटेंगी, तो फिर सवाल है कि इसकी जगह क्या लेगा, भविष्य की तस्वीर क्या थी पूज्य गुरुदेव के अनुसार।
उन्होंने एक विश्व राष्ट्र का विजन रखा, एक दुनिया जहां वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा प्राचीन भारतीय आदर्श है।
हाँ, सारी पृथ्वी एक परिवार है।
वो सिर्फ एक कहने की बात न हो बल्कि जीवन की सच्चाई बने। जमीन, संसाधन, ये सब किसी एक देश या ग्रुप के नहीं,
सबके साझे होंगे।
हाँ, सबके साझा। हर इलाके के उत्पादन का फायदा हर किसी को बराबर मिले। शोषण का नामो निशान न हो।
इसमें तो बहुत गहरे नैतिक बदलाव की बात है। ये सिर्फ सिस्टम बदलना नहीं, ये तो सोच बदलना है।
बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो समर्थ हैं, साधन वाले हैं, भले ही वो संख्या में कम हो
जी,
उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी किसकी? उन कमजोर और पिछड़े हुए बहुमत की जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको ऊपर उठाने की।
अच्छा, जैसे जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, वही भाव, जैसे अभिभावक अपने कई छोटे बच्चों को प्यार से पालते हैं, काबिल बनाते हैं। वो जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली आदत है ना, शोषण की पुरानी नीति,
उसे छोड़ना होगा पूरी तरह।
हाँ, उसे पूरी तरह त्यागना होगा। और ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या दुनिया का समाज इस तरह की साझा जिम्मेदारी, सामूहिक कल्याण की भावना को अपना सकता है?
तो 1984 में लिखे गए ये विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या वाकई ये जो राष्ट्रों की सीमाएं हैं, उनका आपसी स्वार्थ है, शक्ति प्रदर्शन है, यही हमारी दुनिया की समस्याओं की जड़ में है?
पूज्य गुरुदेव का ये विश्लेषण हमें मजबूर करता है कि हम मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पर, राष्ट्रवाद की धारणाओं पर और ये जो संसाधनों पर मालिकाना हक जमाने की सोच है,
हाँ,
उस पर गंभीरता से दोबारा सोचें। ये सिर्फ भविष्य की झलक नहीं, ये एक तरह का आह्वान भी है, एकता के लिए, समान भागीदारी के लिए, आपसी जिम्मेदारी के लिए।
ये उस पुराने पड़ चुके ढांचे को बदलने की पुकार है जो शायद अब उतना कारगर नहीं रहा, जो अपनी उपयोगिता खो चुका है। क्षे में एक बुनियादी बदलाव और एक विश्व एक राष्ट्र के उदय की संभावना जताई थी, एक ऐसी व्यवस्था जहां विश्व की एकता और सारे इंसानों की एकता का व्यवहारिक रूप देखा जा सके।
और ये हमें इस आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इंसान वाकई
अपनी जाति, वर्ग, लिंग और खासकर ये जो राष्ट्रीयता की मजबूत दीवारें हैं, क्या इनसे कभी ऊपर उठ पाएगा, जैसा पूज्य गुरुदेव ने इशारा किया था? क्या एक दुनिया एक मानव परिवार का आदर्श कभी सचमुच जिया जा सकेगा? और अगर हाँ, तो इस पुराने बंटे हुए ढांचे को बदलकर एक नया, एक जुड़ा हुआ विश्व बनाने के लिए आखिर किस तरह के सामूहिक चिंतन और शायद किस तरह की वैश्विक उथल पुथल की जरूरत होगी।